ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। वन्देहं श्रीगुरुस्यूतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विषुबानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आगे कुछ अध्याय जो आने वाले हैं, उसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में वर्णन आएगा जिसके बारे में सुनना सभी को इंटरेस्टिंग लगता है। कौन है? यमराज है ना? यमराज के बारे में सुनना अच्छा लगता है ना? 12 महाजन में से एक है, एक और दूसरा यमदूतों के भी स्वामी है, इसलिए थोड़ा फैसिनेशन ज्यादा आता है। नहीं तो यमराज की शादी कैसे हुई, किसके साथ हुई, वो सभी वर्णन आएगा। ओके तो पिछले बार हमने ताम्रध्वज और मरुध्वज का उपाख्यान सुनाया था। अभी आगे जयमिनी जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय तदनंतर वे दोनों घोड़े घूमते हुए राजा वीर वर्मा के नगर में जा पहुंचे। अभी दो घोड़े हो गए ना, एक तो युधिष्ठिर का था और दूसरा मयूरध्वज का, क्योंकि मयूरध्वज भी अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे, वो भी उसमें जुड़ गए, तो दो घोड़े हो गए। अभी भगवान श्री कृष्ण भी सारी सेना के साथ उनकी रक्षा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनके पीछे पीछे वहां गए। उस नगर में राजा ने धर्म को चतुष्पद यानी कि चौपाया बना दिया था, अर्थात वहां धर्म की कोई ग्लानी नहीं थी। वहां जैसे कलयुग में होता है ना कि धर्म सिर्फ एक पैर पे खड़ा होता है, वहां ऐसा नहीं था, चतुष्पद थे धर्म के, अर्थात वहां धर्म के सत्य दया शौच एवं इंद्रिय संयम इन चारों चरणों का पूर्ण रूप से पालन होता था। साक्षात यमराज राजा वीर वर्मा के जामाता थे, जवाई को यहां अभी ये पूछोगे तुम, क्या बोलू बताऊ, जामाता कौन होते हैं? जैसे नहीं बता दो उसमें क्या है, जैसे तुम्हारी बहन की जब शादी होगी तब उसके जो पतिदेव होंगे वो तुम्हारे पिताजी के जामाता हुए, समझा? ठीक है, लड़की का पति, लेकिन उसको प्रैक्टिकली समझा देता हूं ना मैं, हाँ? नहीं वो भविष्य में ब्रह्मचारी बना दो, इससे पहले वो दिमाग में आया लेकिन वो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, इसलिए जो प्रैक्टिकल है वही बताया मैंने उसको। तो यमराज राजा वीर वर्मा के जामाता थे, वे मूर्तिमान होकर उनके राज्य में, यमराज मूर्तिमान ही है, उनके राज्य में निवास करते थे, मतलब साक्षात यमराज वहां निवास करते थे वीर वर्मा के राज्य में। रमणीय सारस्वतपुर में उनकी राजधानी थी, जहां धर्म अर्थ काम और मोक्ष के पारगामी धार्मिक मनुष्य निवास करते थे। वे कभी स्वप्न में भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते थे। जब राजा वीर वर्मा ने सुना कि बहुसंख्यक राजसेवकों से युक्त मेरे राज्य में श्री कृष्ण के साथ साथ अर्जुन दो यज्ञ अश्वों की रक्षा करते हुए आ पहुंचे हैं, तब उन्होंने अपने महाबली सेवकों को उन घोड़ों को पकड़ लेने के लिए आज्ञा देते हुए कहा। उनको पता चला घोड़े आ रहे हैं, युधिष्ठिर का भी घोड़ा है और साथ में श्री कृष्ण भी आ रहे हैं, तो घोड़ा पकड़ने के लिए आज्ञा दे रही। वीरो, मेरे मनोहर राज्य में महामनस्वी अर्जुन के अश्वमेध यज्ञ संबंधी दो घोड़े चीरकाल से विचर रहे हैं, उन्हें तुम लोग बलपूर्वक पकड़ लो। राजा का आदेश युक्त वचन सुनकर नाना प्रकार की सेना नगर से बाहर निकलने लगी। उस सेना के साथ पांच महान रणधीर वीर घोड़ों को पकड़ने के लिए चले। उनके नाम थे, क्या थे वो वीर, वीर के नाम बताएं। सुभाल, सुरभ, लील, कुवल और सरल। वे पांचों राजा वीर वर्मा के पुत्र थे और धनुष धारण किए हुए दिव्य रथों पर सवार थे। वे आगे बढ़कर अर्जुन की सेना के सन्निकट जा पहुंचे। सारस्वतपुर, इसमें तो सब डिटेल्स नहीं मिलती है ना, सभी राज्यों के नाम इसमें तो नहीं मिलता है। रिसर्च का सब्जेक्ट है, कहाँ है सारस्वतपुर। ओके, वहां रण क्षेत्र में स्थित शत्रु पक्षी वीरों को तृण के समान समझकर उन्होंने रोष पूर्वक उन दोनों घोड़ों को पकड़ लिया और फिर वे राजा वीर वर्मा के पास चल दिए। राजेंद्र जन्मेजय, जब वे महाबली वीर राजा के पास जाने लगे तब तक बब्रुवाहन ने उन्हें ललकारा। उस समय महातेजस्वी अर्जुन कुमार बब्रुवाहन ने इतना भयंकर शंखनाद किया कि उसे सुनकर उन वीरों के कान बहरे हो गए। तब पश्चात वह रोष में भरकर स्वर्ण जटित बाणों से शत्रु सेना का सर्वनाश करने लगा। कौन? बब्रुवाहन। किसकी सेना का संहार करने लगा? वीर वर्मा। राजा जन्मेजय, तदनंतर रणभूमि में अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध होने लगा। तुमुल युद्ध, तुमुल, तुमुल मतलब, तुमुल का क्या होता है? घनघोर, एक्चुअली तुमुल ध्वनि ऐसा बोलते हैं, और इंग्लिश में एक वर्ड है जो एग्जैक्टली तुमुल से बना है, उसका मीनिंग भी वही है, tumultus, वो सेम, उसका मीनिंग भी वही, और संस्कृत से ही वो शब्द बना है इंग्लिश में। हाँ, यस। उन मदोत्कट वीरों ने पहले पैदल सेना पर ही आक्रमण किया, फिर तो वे परस्पर एक दूसरे के केश पकड़कर परस्पर मुक्कों से प्रहार करके तथा एक दूसरे को नखों से बकोटकर युद्ध करने लगे। नाखून से, किसके नाखून है? नहीं, यहाँ तो किसी के नहीं होते, जयनीता है ना, सबके कटवा देते हैं। देख लो, जयनीता मतलब कटवा देना, ऐसा बोल रहा हूँ, अभी आपको पता चल गया अभी आपको। ओके, कहीं रथी वीर हाथी सवारों से उलझ गए तो कहीं वे हाथी सवार घुड़सवारों से जा भिड़े। इस प्रकार भगवान रुद्र की क्रीड़ा स्थली की भांति वहां मर्यादा रहित युद्ध होने लगा। जैसे अग्नि में डाला हुआ चमड़ा सिकुड़ जाता है, उसी प्रकार वीर बब्रुवाहन द्वारा मारी जाती हुई वह विशाल सेना संकुचित हो गई, अर्थात सिमटकर थोड़े स्थान में आ गई। तब तक संयमनीपुरी के स्वामी यमराज राजा बब्रुवाहन के सामने युद्ध के लिए आ डटे। बब्रुवाहन के सामने यमराज, वाह। और फिर वे क्रोध में भरकर उत्कर्ष को प्राप्ति होती हुई अर्जुन की सेना का संहार करने लगे। यमराज स्वयं, डेथ हिमसेल्फ हैज अपीयर्ड ऑन द बैटलफील्ड। नरेश्वर जन्मेजय, धर्मराज ने अपने श्वशुर के निमित्त अर्जुन की अनेक प्रकार की सेना को मार गिराया। उस समय उस अत्यंत भयंकर सेना के बहुत से वीर मार डाले गए। भरतमर्षि जन्मेजय, तब तदनंतर जब अर्जुन ने देखा कि वीर वर्मा के जामाता द्वारा मेरी बहुत सी सेना मार डाली गई, तब वे आश्चर्यचकित से होकर भगवान केशव से पूछने लगे, क्योंकि यमराज को तो डराने वाले एक ही है, कौन? श्री कृष्ण। यस यद विभेति स्वयं भयम्। ऋषिकेश, माधव, यह कौन सा देवता है जो मनुष्य रूप धारण करके आपकी आंखों के सामने अपने तीखे बाणों से मेरी सेना का संहार कर रहा है? वासुदेव ने उत्तर दिया, महाबाहो, तुम्हें विदित होना चाहिए कि युद्ध स्थल में जो ये सामने खड़े हैं साक्षात यमराज हैं। राजा वीरवर्मा ने अपनी कन्या का वरण करने के लिए इन्हें अपने नगर में प्रार्थना करके बुलाया था। यमराज का भी कोई आवाहन करता है क्या? हाँ, किया था ना। कैसे? किसने किया था पहले? कुंती देवी ने। कुंती देवी ने आवाहन किया था ना यमराज का। कौन उत्पन्न हुए? युधिष्ठिर। हाँ, वो अलग बात है। हाँ, यस यस। ससुर भी थे ना यहाँ, दो पक्ष में खींचा था, नहीं थी यहाँ। धर्म संकट, एक तरफ उनके ससुर थे और एक तरफ उनके पुत्र का यज्ञ। तो देखते हैं आगे,
जानते
हैं कितनी। तब अर्जुन ने पूछा, श्री कृष्ण, आपने यह क्या कहा कि यमराज राजा वीरवर्मा की कन्या के पति हैं? केशव, यह घटना कैसे घटित हुई थी? यह सारा वृत्तांत मुझे बताने की कृपा कीजिए। अभी युद्ध तो साइड पर रह गया। अर्जुन जो है, जब भी अवसर मिलता है वो कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं, वो युद्ध की चिंता नहीं करते, क्योंकि युद्ध उनके बाएं हाथ का खेल है। वो बोले, ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है? हरि कथा। अभी बता रहे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहने लगे, पार्थ, इस राजा वीर वर्मा के एक मालिनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी। क्या नाम है? मालिनी। वह मालिनी भूतल पर किसी मनुष्य को पति रूप में वरण करना नहीं चाहती थी। पहले घर पर जब उसके पिता ने उस सुंदरी मालिनी से पूछा, बेटी, यदि तू मनुष्य को अपना पति बनाना नहीं चाहती तो बता, मैं किसके साथ तेरा विवाह कर दूं? मालिनी ने कहा, पिताजी, आप मुझे धर्मराज के हाथ में समर्पण कर दीजिए। इनके अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे मानव तो मृत्यु के पश्चात इन यमराज के ही भवन में जाते हैं। इन धर्मराज के शरीर को पति रूप में प्राप्त पाकर मैं उत्तम कीर्ति की भागिनी हो जाऊंगी और पतिदेव को संतुष्ट करने वाले अपने गुणों के प्रभाव से श्री कृष्ण को प्राप्त हुए लोगों की श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लूंगी। पिताजी, यदि मैं पहले मनुष्य के साथ विवाह कर लूं तो मृत्यु के पश्चात मुझे भी चिताग्नि में पड़ना पड़ेगा। उस समय अग्निदेव मेरे शरीर का स्पर्श कर लेंगे, अतः तात जिस प्रकार पतिदेव के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के साथ मेरा संपर्क न हो सके, वैसा ही प्रयत्न आपको करना चाहिए। इसलिए धर्मराज ही मेरे योग्य वर हैं। भूतल पर उत्पन्न हुई जो स्त्री पिता द्वारा दिए गए पुरुष को पति रूप में पाकर पीछे मोहवश अपने उस पति को धोखा देकर पर पुरुष के साथ संबंध कर लेती है, उस पापिनी को ये सूर्यपुत्र यमराज नरक में धकेल देते हैं। इसलिए मैं पहले ही इन्हें अपना पति बनाकर इनकी आज्ञा में रहना चाहती हूँ। पिताजी, वहां यमलोक में ये धर्मराज पापों से मेरी रक्षा करते रहेंगे, जिससे आपका कन्यादान का पुण्य सर्वदा सुरक्षित रहेगा। जब साधारण जन को दान की हुई कन्या पुण्य प्रदान करने वाली होती है, तब यदि आप मुझे साक्षात मूर्तिधारी धर्मराज को दे देंगे, तब मैं आपके लिए परम कल्याणकारिणी हूं। इसके लिए तो कहना ही क्या है। पिताजी, मैंने अपने हृदय में ऐसा ही कर्तव्य सोच रखा है। ऐसा करने से मेरे जो नाना प्रकार के कार्य हैं, वे सभी धर्मराज द्वारा सुरक्षित रहेंगे। अतः धर्मराज को पति रूप में पा लेने पर मेरे सभी सुंदर मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। जयमिनी कहते, जन्मेजय, अपनी कन्या की ऐसी बात सुनकर राजा वीर वर्मा दिन रात निरंतर यमसूक्तों द्वारा यमराज की स्तुति करने लगे। यमसूक्त वेदों में होगा, कौन से वेद में है मुझे नहीं पता है। उधर मालिनी भी विधिपूर्वक यमदेव की आराधना में तत्पर हो गई। यहां तक कि युवावस्था आ जाने पर भी मालिनी ने यमराज का ध्यान करना नहीं छोड़ा। जब नारद जी को यह बात मालूम हुई तो वे विचार करने लगे, अहो यह राजकुमारी यमराज के प्रति ऐसा भक्तिभाव कर रही है परंतु स्वयं यमराज इसे जानते ही नहीं। अतः अब मैं उनके पास चलकर उनसे मालिनी के अत्यंत सुंदर भक्तिभाव का वर्णन करूंगा। यमराज तो सबके साथ समान व्यवहार करने में प्रसिद्ध है। वे मनुष्यों के हृदयों में उठे हुए अत्यंत गुप्त विचारों को भी जान लेते हैं और मालिनी प्रतिदिन उनकी प्रसन्नता के लिए धर्म कार्य का अनुष्ठान करती रहती है। फिर भी न जाने क्यों वे उसे दर्शन देने में शिथिलता दिखाकर अपने कर्मफल को दूषित कर रहे हैं। जयमिनी जी कहते जन्मेजय, तदनंतर देवर्षि नारद यमराज के भवन की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज से उनकी प्रिया राजकुमारी मालिनी का वृत्तांत निवेदन किया। यमराज के भवन मतलब कहां? यमपुरी। यमपुरी मतलब यमराज का जो भवन है वो तो वो स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक में है। मतलब ये नरक लोक या संयमनी क्या है? संयमनी तो उनकी सभा है। ऑफकोर्स संयमनी में पापी और पुण्यशाली दोनों प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन वो सभा है संयमनी, वो उनका भवन नहीं है, वो उनका रेसिडेंशियल नहीं है, रेसिडेंस नहीं है उनका, उनकी ऑफिस है वो, उनकी सभा है। तो ये उनके भवन में गए, अर्थात उनका जो वो लोग जो स्वर्गलोक में है वहां गए। तो इसकी बात तो उसमें भी आती है कठोपनिषद में, इनका ड्रामा करवाया था पहले एक बार, ड्रामा नहीं कराया कभी। नचिकेता और यमराज की कथा कठोपनिषद में दी है, उसमें भी इसी प्रकार से बने, वो भी नचिकेता भी वहीं जाते हैं यमराज के भवन की ओर, तीन दिन तीन रात। अभी वहां यमराज की पत्नी उनका स्वागत करती है। अभी वो मालिनी की है, मालिनी है कि कोई और पत्नी थी वो पता नहीं, वो चेक करना पड़ेगा कठोपनिषद में भी जाकर, क्योंकि यमराज की तो और भी पत्नियां होगी, जरूरी नहीं कि मालिनी ही हो। वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज से उनकी प्रिया राजकुमारी मालिनी का वृत्तांत निवेदन किया। वे बोले, धर्मराज आप नहीं जानते, राजकुमारी मालिनी आपका ही अनुवर्तन करने वाली सत्यव्रत में तत्पर तथा धर्म परायणा है, वह आपके लिए अपना समस्त पुण्य प्रदान करती रहती है, प्रतिदिन आपका ही ध्यान करती है, अतः आप शीघ्र ही उसका पत्नी रूप में वरण कीजिए, क्योंकि सब पुरुष ही पराई आशा को सफल करते हैं, दुर्जन नहीं। इसलिए अब आप मनुष्य का वेश धारण करके अपने सेवकों के साथ राजा वीर वर्मा द्वारा सुरक्षित उस रमणीय सारस्वतपुर में चलिए, जहां धर्म अपने चारों चरणों से संयुक्त होकर विराजमान रहते हैं और जहां के निवासियों के मन में किसी प्रकार का भय नहीं है। आपके पहुंच जाने से वह नगरी और भी धन्य हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। शौर्य। तो यहां एक दूसरी बात समझने वाली ये भी है कि यमराज इस सारस्वतपुर में जा रहे हैं तो वो उसी जगह जाएंगे जहां धर्म सुरक्षित है, जहां धर्म का पालन हो रहा है, तभी तो योग्यता अधिकार है। क्योंकि वीर वर्मा यमराज का आवाहन कर रहे हैं तो यमराज को ऐसी वैसी जगह तो जाएंगे, इस रूप में अपने जामाता के रूप में वो आवाहन कर रहे हैं तो वो तो उनका अधिकार भी होना चाहिए। तो यहां वीर वर्मा ने अपने नगर में धर्म की बिल्कुल ग्लानि नहीं होने दी थी, तभी तो वो योग्य है, वो इसलिए वो वहां जाने का उन्होंने निश्चय किया। तो बोले कि वो तो ऑलरेडी वो जगह पुण्यशाली है, वो राज्य पुण्यशाली, आपके जाने से और भी धन्य हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पार्थ, तब यमराज ने नारद जी को यह संदेश देकर सारस्वतपुर में को भेजा कि आगामी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मैं मालिनी का वरण करूंगा। वैशाख मास तो अभी दूर है ना, कब आने वाला है? बहुत दूर है। मैं हाँ ऑलरेडी गया हूं। तो यमराज के यों कहने पर नारद जी वीर वर्मा के पास गए और वहां उन्होंने राजा से यमराज के कहे हुए परम मांगलिक वृत्तांत का वर्णन किया। नारद जी की बात सुनकर राजा वीर वर्मा अपनी कन्या का विवाह करने के लिए उद्यत हो उसकी व्यवस्था में लग गए। उधर यमराज ने भी अपने 108 नायकों को प्रसन्नतापूर्वक बारात में चलने का आदेश दिया। 108 नायक यमराज के। हाँ क्या बोलते हैं? नायक, नायक ऐसे बताया है, वे सभी नायक विशालकाय तथा महान बल पराक्रम से संपन्न थे। उनमें जो सबसे प्रतिष्ठित महान वीर था वह ब्रह्म हत्या का शेष रूप स्वर और धातु का विनाश करने वाला था तथा रोगों में प्रधान क्षय रोग था। अपने उस अंतरंग नायक से यमराज ने यूं कहा, तो मतलब ये जो नायक हैं वो अलग अलग प्रकार के उनके महापाप पातक महापातक मूर्तिमान होकर और रोग भी मूर्तिमान होकर वो आएगा वर्णन इसमें। ये यमराज के तो यही नायक होंगे ना, और कौन होंगे? हाँ दोनों दूसरे भी हैं, धर्मराज और यमराज। या वो ठीक है, लेकिन यहाँ अभी पूरे 108 का तो वर्णन नहीं दिया है यहाँ। वे सभी उनमें जो सबसे प्रतिष्ठित महान वीर था वह ब्रह्म हत्या का शेष रूप स्वर और धातु का विनाश करने वाला था। स्वर और धातु का, शरीर में जो धातु होती है उसके विनाश करने वाला था, रोगों में प्रधान क्षय रोग था। अच्छा, ब्रह्म हत्या का शेष रूप। अच्छा, उसका मतलब ये हुआ है, होता है कि क्षय रोग जो होता है वो ब्रह्म हत्या के की जब कोई शेष बाकी रह जाता है तब क्षय रोग होता है। ये मतलब हुआ उसका? टीबी क्षय रोग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, मैं बता रहा हूँ वही। एक तो ब्रह्म हत्या का शेष रूप कौमा स्वर और धातु का विनाश करने वाला, यस, वो मतलब वो क्षय रोग। यह क्षय रोग की विशेषता बताइए। उसका मतलब यह कि जिस व्यक्ति को क्षय रोग होता है उसके अंदर ब्रह्म हत्या का कुछ शेष है। नहीं, वही बताया ना, वह जो महान वीर था वह ब्रह्म हत्या का शेष रूप स्वर तथा स्वर और धातु का विनाश करने वाला तथा रोगों में प्रधान क्षय रोग था। हाँ वो एक ही के अंदर है, एक ही के अंदर है। हाँ कि ये क्षय रोग किसको होगा? क्षय रोग अलग अलग प्रकार के उसमें वो है कि उन लोगों को क्षय रोग, लेकिन एक में प्रधान रूप से बताया है कि वह ब्रह्म हत्या का शेष रूप, मतलब कुछ, हाँ कुछ बचा हुआ, और वही जो है उसकी वजह से जो क्षय रोग होता है वो कैसा है? स्वर और धातु का विनाश करने वाला तथा रोगों में प्रधान है। हाँ वो है ना, वो तो महापातक में जाएगा। वो तो कृत्या के रूप में, चुड़ैल के रूप में। ब्रह्म हत्या जो इंद्र के पीछे जो लगी थी या विश्वरूप का वध करने की वजह से, दैट वाज, वो चुड़ैल थी, तो उसने वो जो ब्रह्म हत्या थी उसने कृत्या का रूप धारण, चुड़ैल का रूप धारण किया था ना उसने। शी वॉज अ फीमेल, वो यस, लेकिन वो ब्रह्म हत्या यही, ओके सी, क्योंकि ब्रह्म हत्या मतलब पुरुष है कि स्त्री है वो तो देखना पड़ेगा, हमें नहीं पता। यहाँ तो रोग की बात हो रही है, वहां प्रभुपाद जी ने ऐसा लिखा है कि वो ब्रह्म हत्या मूर्तिमान ऐसे करके लिखा है भागवतम में। ओके, तो हत्या तो स्त्रीलिंग है इसलिए कृत्या भी स्त्री रूप में ही है। यस ठीक है, आपने उस अंतरंग नायक से यमराज ने यूं कहा। यमराज बोले, यक्षमन मैं तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, तुम मेरे इस शुभ विवाह के अवसर पर अपने सेवकों के साथ भूतल के विचित्र नगर सारस्वतपुर को चलो। सारस्वतपुर जा रहे हो क्या? हेलो ठीक है जाओ। तो यक्षमा ने कहा, नाथ उस राज्य में मेरा गमन कैसे संभव हो सकता है? देखिए यक्षमा पूछ रहे हैं कि नाथ उस राज्य में मेरा गमन कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि वहां के निवासी ब्राह्मणों के प्रेमी हैं और वहां का राजा भी द्विजों की शुश्रूषा करने वाला है। उस देश के ब्राह्मण वेदपाठी हैं, उनकी उग्र वेद ध्वनि तथा हवन कुंड से उठा हुआ धूम निसंदेह मेरे कानों तथा नेत्रों के लिए कष्टकर होगा। मेरा पुत्र प्रमेह डायबिटीज, प्रमेह तो डायबिटीज हुआ ना। देखिए ये मेडिकल साइंस, यहाँ रियल मेडिकल साइंस पैथोलॉजी, द रियल पैथोलॉजी इज हियर। नहीं, ऐसा नहीं है, बाप बेटे का संबंध है दोनों में। बताया यहाँ देखो यमराज का नहीं बेटा आ जाएगा प्रमेहम पुत्रकम सूक्ष्मम, ये वो क्षय रोग का पुत्र है, मतलब यमराज के नायक का पुत्र, और वो नायक में भी एक है, वो नायक में स्वयं है, एक सौ आठ नायक, खेलना बंद करो ना सुनो, नहीं तो एक सौ आठ नायक में से एक नायक तुम्हारे पीछे दौड़ा दूंगा अभी। मेरा पुत्र प्रमेह जो सूक्ष्म शरीर वाला है, जिसकी आंखें गाय के घी के समान पीत वर्ण की है, जो भूतल पर चीरकाल से प्राणियों के मूत्र का विनाशक है और गुण में मेरे ही समान है, उसे मैं वहां कहां रख सकूंगा। तो डायबिटीज में, हाँ डायबिटीज में शुगर जाता है ना उसमें यूरिन में, यस हाँ, वो डायबिटीज वो बहुत भयंकर होता है, डायबिटीज यदि कंट्रोल नहीं किया जाए तो वो खत्म कर सकता है मनुष्य को। रवि नंदन, आपकी दासी जो हैजा है उसका संस्कृत नाम है विषूचिका, हैजा मतलब डायरिया, कॉलेरा, और कॉलेरा तो भयंकर है। कॉलेरा के ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, प्रभु आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी हालत होती है पेशेंट की, टेरिबल, कॉलेरा इज रियली टेरिबल। अभी नहीं पहले की बात कर रहा हूं, वो तो अभी यमराज ने अपना कॉलेरा सही रूप अभी तक दिखाया, क्योंकि कॉलेरा में भी वैरायटीज होती है, उसमें अलग अलग वैरायटीज होती है, वो तो भगवान की इच्छा से वो उतने समय तक वो शमन हो जाता है उसका, यदि भगवान चाहे तो वही वैक्सीन उनकी वही कॉलेरा के लिए काम नहीं करेगी, सब फेल हो जाएगा, जो भगवान की इच्छा से वो देव कंट्रोल करते रहते हैं, इसलिए मनुष्य को ऐसा लगता है कि हमने नियंत्रण पाया, लेकिन एक्चुअली नहीं होता है, वो भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है सब कुछ। हाँ यस, दूसरी आ जाती है, यस। उससे बढ़कर महिमा किसे प्राप्त हो सकती है, वह क्षण मात्र में ही मनुष्य के प्राण ले लेती है, वह उस नगर में कैसे रह सकेगी। इसको यहाँ स्त्री के रूप में बताया, दासी के रूप में बताया, आपकी दासी, यमराज की दासी के रूप में बताया इसको, विषूचिका हैजा। अभी आगे मेरा अमित तेजस्वी भाई जो पांडुरोग है, उसके लिए तो मुझे सारस्वतपुर में कोई स्थान ही नहीं दिख रहा है। पांडुरोग एक प्रकार से जॉन्डिस, हिपेटाइटिस या सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर में वही तो होता है, उसमें शरीर फीका नहीं पड़ जाता, लीवर खत्म हो जाता है, उसमें पूरा लीवर का डिजनरेशन हो जाता है। सिरोसिस जॉन्डिस का बाप है, जॉन्डिस तो कुछ नहीं है, सिरोसिस जब होता है, वो ठीक है मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए पांडुरोग जो है वो तो हम लोग बहुत लिमिटेड अब जानते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है। जैसे हम पहले से शुरुआत करता हूँ, मैं टीबी है, क्षय रोग है, इसमें बताया क्षय रोग, क्षय रोग में क्या क्या आएगा, एक तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम बोल दिया, टीबी जिसको बोलते हैं क्षय रोग, एक तो वो बोल दिया, दूसरा क्षय का सिनोनिम है राजक्षमा, ठीक है, तो राजक्षमा या उस वो टर्म लेंगे तो एक्चुअली राजक्षमा मतलब उसके जो सबसे फुल फ्लेजर जो फॉर्म है उसका वो है एड्स, उसका मैंने एक आयुर्वेद की किताब में पढ़ा था, मैंने अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स, उसमें बॉडी पूरा कंज्यूम हो जाता है, फिर कैंसर भी उसी के अंदर आता है क्योंकि बॉडी कंज्यूम हो जाता है कैंसर में भी, तो उसमें बहुत सारी वैरायटीज है, ये सब क्षय रोगी है, यस कैंसर है, एड्स है, ट्यूबरकुलोसिस है। अभी क्या है, अभी उन्होंने ये ब्रॉड कैटेगरी है, यहाँ जो शास्त्र में वो ब्रॉड कैटेगरी है, लेकिन आप आयुर्वेद स्टडी करेंगे उसमें अलग अलग वैरायटीज मिलेगी आपको, जो मॉडर्न जो पैथोलॉजी है तो उन्होंने उसको अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन जो हमारी आयुर्वेद की जो पद्धति है उसको कैटेगराइजेशन की वो अलग है। तो यहाँ पांडुरोग जो बताया है तो मोर ऑर लेस लीवर का, हाँ लीवर से संबंधित डिजीज है ये, तो जॉन्डिस तो बहुत ऑर्डिनरी सिम्टम है, सिरोसिस ऑफ लीवर में जॉन्डिस पेशेंट को आए दिन होता रहता है, और सिरोसिस ऑफ लीवर एक ऐसा डिजीज है जिस वो मर ही जाता है पेशेंट उसमें, जैसे मतलब पांडुरोग उसके बारे में भी बहुत भयंकर रोग है, सब बड़े असाध्य रोग हैं ये सब, मतलब इसके कुछ आयुर्वेद में उपाय हो सकते हैं, क्योंकि धन्वंतरी के आयुर्वेद में कोई भी रोग असाध्य नहीं है। धन्वंतरी
तीन प्रकार के हैं, साध्य, कष्ट साध्य और असाध्य।
हाँ,
तीन प्रकार के वो कर्म के अनुसार होते हैं।
तो इवन जो असाध्य जो रोग हैं, तो धन्वंतरी ने जो मूल जो आयुर्वेद दिया था उसमें भी उसके उपाय नहीं बताए।
तीन कैटेगरी है,
असाध्य असाध्य सब बिल्कुल क्यों नहीं होते हैं?
कुछ बीमारियां कुछ समय बाद असाध्य हो जाती है।
हाँ,
साध्य होती, कष्ट साध्य होती, असाध्य होती है, साध्य में उतर जाती
है। हाँ हाँ,
तो वो भी लॉजिकल है कि असाध्य भी होनी चाहिए, क्योंकि कर्म के अनुसार है, तो कुछ कर्म ऐसे इसमें
उसका कुछ प्रायश्चित, क्योंकि इसमें प्रायश्चित आएगा, वो प्रायश्चित यमराज बताएंगे, तो वो उसका उपाय हो सकता है। ओके, उसके लिए तो मुझे सारस्वतपुर में कोई स्थान ही नहीं दिख रहा है। भाई पांडव, ए सुनो, भाई पांडु की विशालोचना भार्या सोफा यानी कि सुजन है। सुजन जो होती है ना, स्वेलिंग, इडिमा, मेडिकल लैंग्वेज में इडिमा, जो बलिष्ठ लोगों के प्राणों का अपहरण करने वाली है, वहां कहां रहेगी? तो क्या सिर्फ स्वेलिंग की वजह से डेथ होती है क्या? नहीं, जैसे हाँ, ओके okay. उस तरह से होगा, लेकिन जैसे हिपेटोमेगली है, लीवर का नहीं, मैगली मतलब एक्सपांशन हुआ ना, वो भी वही एडिमा से अलग है। अच्छा, अब वो तो एनलार्जमेंट है, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, राइट। तथा सोफा के साथ समागम करके उस पांडु ने जिस जलोदर नामक पुत्र को प्राप्त किया है, असाइटिस, जलोदर मतलब क्या होता है, पेट में पानी भर जाता है अबनॉर्मल, और उसमें फिर इंफ्लेमेशन भी होता होगा। यस, जलोदर नामक पुत्र को उत्पन्न किया है, वह गुणों में अपने पिता के ही समान है, उसे मैं नगर में कहां ठहराऊंगा?
यहाँ पर प्रश्न,
हाँ,
यहाँ पर जो भी भेजने का है वो तो निवास में तो नहीं भेज रहे?
नहीं नहीं, जितना समय रहेंगे गेस्ट हाउस मिलना चाहिए ना, कहाँ रहेंगे? गेस्ट हाउस मतलब मानव शरीर,
उनके उपस्थित होने पे ही सब कुछ शुरू हो जाएगा।
हाँ, बताएंगे यमराज, आपके सवाल का जवाब इसमें आएगा। क्या है कि यहाँ वो जाएंगे, क्या है, शादी होने वाली है, बाराती हैं ये लोग, ये यमराज के बाराती हैं, कहाँ रहेंगे? रहने के लिए गेस्ट हाउस चाहिए ना, और वो गेस्ट हाउस कौन से हैं? पापी लोगों के शरीर, वो उनके गेस्ट हाउस हैं, लेकिन पापी मनुष्य होने चाहिए ना वहाँ, तो रहेंगे कहाँ वहाँ? इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो वहाँ
यमराज है, यमराज तो,
लेकिन सामान्य मनुष्यों के सामने मूर्तिमान होकर प्रकट नहीं होते हैं वो। सामान्य मनुष्य जो होते हैं उनके सामने ऐसे मूर्तिमान नहीं आते हैं, वो उनका एक अपना अपनी कंडीशन है, जरा दूर सूक्ष्म रूप से।
मैं कह रहा हूँ कि जब वो अपनी पूरी में मूल रूप में प्रकट तो उनके पार्षद भी, उनके नायक भी, उनके साथी।
देखिए यमराज क्या कह रहे हैं, दूर बैठो। सूर्यपुत्र बला, जिस देश का राजा सदा धर्म में तत्पर रहने वाला हो, मतलब ये ऐसी कंसर्न है, आप जो बोल रहे हैं चलो मूर्तिमान होकर भी, लेकिन वहां एंट्री नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है वहां, उनको प्रवेश का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जो रोग है वो पापी लोगों के राज्य में जा सकते हैं ना, अधिकार ही नहीं है प्रवेश। मूर्तिमान से मान लीजिए, मूर्तिमान है और मूर्तिमान ही है, मानने की जरूरत नहीं है, मूर्तिमान है, लेकिन उनका प्रवेश का वो अधिकार ही नहीं है ना, उनको वीजा नहीं है, वीजा अंदर जाने का।
मूर्तिमान होते हुए भी मूर्तिमान ऐसा सोचते कि थ्री डायमेंशन में केवल एक मूर्ति है, उसको मूर्तिमान रहने की जगह दूसरी अलग प्रकार से भी होती है। मूर्तिमान होते हुए भी उनको अलग अलग शरीर चाहिए रहने के लिए, ऐसा भी होता है, इसलिए भी जो बोल रहे हो सही हो सकता है। और अभी किसी का आहार ही मांस है, तो वैष्णव के विवाह में आएगा तो उसको क्या मिलेगा? इन सबको उधर रहने के लिए प्राप्त होगा तो भी वो ये सब बीमारी चाहिए उनको, दूसरे को देने के लिए उनका ही प्रभाव है, उनका रोज की बात है।
नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, यमराज का एक सौम्य रूप धर्मराज भी है ना। नहीं, धर्मराज बार बार शब्द का एक ही बात है, यमराज एक ही है, यमराज और धर्मराज एक ही व्यक्ति है, उनका रूप अलग। पुण्य गरुड़ पुराण में वर्णन किया है कि जब पुण्यशाली लोग जब संयमनी जाते हैं तो वहां उनका सौम्य रूप होता है, बहुत सुंदर रूप होता है उनका। धर्मराज बोल लीजिए, यमराज बोल लीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूप उनका सौम्य होता है। लेकिन जब पापी लोग जाते हैं तो उनका रूप भयंकर होता है। यहां तो वीर वर्मा तो पुण्यशाली है ना, वो तो धर्म का पालन करने वाले हैं, तो वो अपना भयंकर रूप थोड़ी धारण करेंगे वहां। हाँ, क्योंकि वो लोग तो वो तो वैसे के वैसे ही है ना, उनके ड्यूअल फॉर्म्स नहीं है, उनका तो स्पेसिफिक रोल है, यमराज के ड्यूअल रोल्स हैं। यमराज बोलते हैं ऐसा नहीं है,
यस धर्म पालन करने वाला जो भी जो करेगा उसके अकॉर्डिंगली वो देगा।
यस यस, वो धर्म के अंतर्गत ही है। यस, और सामान्य रूप से ऐसा होता नहीं कि मरते हुए व्यक्ति को यमराज स्वयं लेने के लिए, ऐसा सामान्य रूप से नहीं होता है। इट वॉज एक्सेप्शनल। हाँ, ये आप लोग क्या है, मेरे लाइन में क्यों आ गए, दूर बैठो थोड़ा, जाओ दूर जाओ जाओ। सूर्यपुत्र भला जिस देश का राजा सदा धर्म में तत्पर रहने वाला हो और जहाँ का महान जन समुदाय नित्य पवित्र कार्य करने वाला करने का अभ्यासी हो, वहां मैं मूर्तिमान होकर कैसे रह सकता हूँ, ये बताया जलोदर ने। नाथ, आप द्वारा सम्मानित जो ये व्रण यानी कि फोड़े हैं, अभी हम सब लोगों को फोड़े हुए ना पानी की वजह से, इनके सामने पहुंचकर क्या मेरी शोचनीय दशा नहीं हो जाएगी? प्रभो, उस समय तो मैं परमाणु के तुल्य ही दिख पड़ूंगा। ये तो बहुत एडवांस लेवल का व्रण के बारे में वर्णन किया है ऐसा लग रहा है। इन व्रणों का उत्कृष्ट तेज अपने पुरुषार्थ से गुरु पत्नी गामी विप्र हत्यारे तथा शिशु घाती भूपतियों का संहार कर डालता है। ये तो एडवांस लेवल का है।
ये वाले पाप के लिए फोड़े होते
हैं। हाँ, वो फोड़े अलग टाइप के होते होंगे, पूरे शरीर में फोड़े हो जाते होंगे। विभो, व्रण के बहुत से भेद हैं। देखो यहाँ बताया, व्रण के बहुत से भेद हैं जिनमें 108 प्रधान है। अरे बाप रे, 108 प्रधान मतलब कितने टाइप के होंगे, इसी से पता चलता है कि टीबी भी होगा, अक्षय होगा, तो उसमें कितनी वैरायटीज होगी, इसी से पता चलता है। यही लॉजिक वहां भी लागू होगा। व्रण के बहुत से भेद जिसमें जिनमें 108 प्रधान है, उस व्रण की पत्नी खाज है, खुजली, एक्जिमा, एक्जिमा, सोरायसिस, स्किन प्रॉब्लम, हाँ, खुजली साथ में। उस व्रण की पत्नी वी चर्चिका, संस्कृत में उसको वी चर्चिका बोलते हैं। हाँ, क्या बातचीत कर रहे हैं। और भगंदर उसका पुत्र है। भगंदर क्या होता है, भवंडर नहीं, भगंदर, भगंदर, राइट, स्पाइस एंड फिशर्स, राइट। हाँ, अपनी जगह से बदल जाता है। ओके, अच्छा, और भगंदर उसका पुत्र है। यह भगंदर गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले पुरुषों की शिष्ण इंद्रिय के मूल स्थान में होता है। ओह, ये तो बहुत स्पेसिफिक है। उस देश के निवासी मनुष्य धर्म में तत्पर, उस देश के निवासी मनुष्य धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। वे कभी अपने को आज्ञा देने वाले गुरुजनों की छाया का भी स्पर्श नहीं करते हैं। तो उनका राजा वीर वर्मा भी पैसा ही धर्मनिष्ठ है। ऐसी दशा में वहां इन स्फोट राज का निवास कदापि वांछनीय नहीं है। अच्छा, यह बतलाइए कि ये जो श्रेष्ठ ज्वरराज सन्निपात है, सन्निपात क्या होता है, ज्वरराज, किंग ऑफ फीवर्स, सन्निपात, सन्निपात शब्द का प्रयोग किया है। ज्वरराज संस्कृत में है ज्वरराट सान्निपाती कह, और ट्रांसलेशन में लिखा है श्रेष्ठ ज्वरराज सन्निपात है, जिन्हें भगवान शंकर ने उत्पन्न किया है, तथा जिनके 13 भेद हैं, ये उस नगर में कहाँ ठहरेंगे? सन्निपात भी शब्द भी सुना हुआ है, नहीं वो तो अर्थराइटिस हुआ, वो अर्थराइटिस है, ये सन्निपात लिखा है। गरु गरु उनको भी चले गए नहीं, वो जो होते
पता लगता है।
हाँ बुखार बुखार याद लगा ज्वरराज।
शिव जी ने दिया जैसे ध्रुव महाराज के समय वो शिव ज्वर छोड़ा था ना,
वो उनके साथ भी युद्ध करते समय, ये जैसे बाणासुर के लिए युद्ध कर रहे थे उस समय भी वो ज्वरास्त्र क्या बोलते उसको, स्वज्वर वस्त्र उन्होंने छोड़ा था, फीवर एक प्रकार का। नाथ यह तो बताइए कि आपका ये जो महाबली वीर नायक अतिसार है, डिसेंट्री डिसेंट्री, जिसकी प्रियतमा पत्नी संग्रहणी है, IBS इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, और प्रकाशमान पुत्र धुमान है, धुमान मुझे नहीं पता धुमान है, तथा दो अन्य महापात की पुत्र अरोचक और क्रोधन है, इन सब के साथ वह सारस्वतपुर में कहां निवास पा सकेगा? अरे ये जो 300 महामनस्वी शूल रोग है, 300 शूल रोग अलग अलग प्रकार के पेन, 300 प्रकार के, ये सब के सब उस नगर में स्थान न मिलने के कारण नष्ट ही हो जाएंगे। ये जो हिक्का यानी कि हिचकी, हिचकी आती है ना हिकप्स, फिर दमा दम अस्मा, 300 प्रकार के, 300 टाइप्स। खत्म हो जाते बस यही लिखा है यहाँ, शतानी त्रीणी शूलानाम तानी यानी महात्मनाम गमिष्यन्ति लयम तत्र स्थानहीनानि मारिषः।
कितने प्रकार के पेन होते हैं? ये तो शूल 300 प्रकार के, और दो होते हैं रुद्र और वेदना, वो भी अलग अलग प्रकार के पेन का कैटेगरी
है। यस, ये शूल मतलब स्टैबिंग पेन होगा, क्योंकि पेन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक तो थ्रॉबिंग पेन होता है, एक स्टैबिंग पेन होता है, और तीसरा और कोई पेन भी होता है ना, नहीं नहीं जैसे एक थ्रोबिंग पेन होता है, जैसे बीच बीच में ऐसे जैसे हेडेक होता है पल्स के साथ, पल्स की तरह वो पल्सेटिव थ्रोबिंग पेन बोलते हैं उसको, फिर स्टेबिंग पेन होता है शार्प शूटिंग पेन, तो वो शूल रोग में आता होगा शायद। फिर हिचकी दमा खांसी और कोढ़ आदि आदि महान भयंकर रोग हैं, वायु ही जिनका स्वरूप है, और शरीर में वायु के ऊपर की ओर उठने से ही जिनकी उत्पत्ति होती है, ये तो उस सारस्वतपुर में भ्रमण ही नहीं कर सकेंगे। यमदेव शरीर को धनुष की तरह टेढ़ा कर देने वाले धनुष धनुष टंकार अति वाद रोग, आगे इसको क्या बोलते हैं, तीन होते हैं ना, लॉर्डोसिस ये रहा, फिर एक ही होता है काइफोसिस, और ये स्कोलियोसिस, तो ये स्कोलियोसिस हुआ है ना, धनुष की तरह टेढ़ा कर देता है शरीर को, धनुष की तरह टेढ़ा कर देने वाले धनुष टंकार आदि वात रोग, चमक चमक कर पीड़ा देने वाला कर्णशूल कान का पेन कर्णशूल, अनेक प्रकार के आकार वाले नेत्र रोग, पाप स्वरूप मुख रोग, जैसे अल्सर होते हैं ना मुंह में भी अलग अलग प्रकार के, फिर शरीर में कैंसर भी होता है मुंह में, तंबाकू खाने वालों को मुंह का कैंसर होता है ना ओरल कैंसर, शरीर में छिद्र कर लेने वाला वाल्मिक वाल्मिक शरीर में छिद्र, वो भी अल्सर है एक प्रकार का, जैसे अल्सर हो जाता ना शरीर में छिद्र करने वाला वाल्मिक, गंडमाला मृगी बालुक भयंकर डमरू रोग सॉरी भयंकर डमरू रोग, विस्तृत सिरदर्द आधा सीसी आदि माइग्रेन, ये जो मुख्य मुख्य रोग हैं, तथा इनके अतिरिक्त अन्य भी जो बहुत सी भयंकर व्याधियां हैं, वे सभी आपके आज्ञा देने पर राजा वीर वर्मा के नगर में यकायक जाने के लिए उद्यत नहीं होंगे। तब यमराज ने कहा, यक्ष्मण ये किसके साथ वार्तालाप चल रहा है, मुख्य नायक जो था इनका यमराज का, क्षयरोग के साथ बातचीत चल रही है यक्ष्मा, यक्ष्मण तुम्हारे जैसे जितने भी नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले महाबली भयंकर रोग हैं, वे सब के सब दिव्यालंकारों से सुसज्जित हो अपना अपना रूप धारण करके राजा वीर वर्मा के पास चले, दिव्यालंकार धारण करके।
दिव्यालंकार कौन होंगे वो? दिव्यालंकार क्या होंगे वो?
हाँ वो भी एक मतलब दिव्यालंकार शायद उनके रोग के लक्षण होंगे शायद, ऐसा कुछ आई डोंट नो। तथा जैसे यहाँ मेरे नगर में रहकर तुम लोग मेरी आज्ञा का पालन करते हो, उसी तरह वहां चलकर तुम सब लोगों को राजा वीर वर्मा की भी आज्ञा माननी चाहिए। अभी बता रहे हैं, भूतल पर जो पापात्मा जीव हैं, वे ही इन संहारकारी रोगों को भयानक रूप में देखेंगे, परंतु जो पुण्यात्मा हैं, उन्हें इनका दर्शन सौम्य रूप में होगा, सौम्य रूप में होगा, दर्शन होगा लेकिन सौम्य रूप में होगा। जैसे धर्मात्मा प्राणियों को ही धर्मराज रूप में मेरा दर्शन प्राप्त होता है, इनके अतिरिक्त जो पाप कर्म करने वाले वाले हैं, उन्हें वारूप दृष्टिगोचर नहीं होता, उन्हें तो मेरा कालाग्नि के समान दारुण रूप ही दिख पड़ता है। अभी हमने जो चर्चा की वही लिखा है सेम। रोगराज गलत कुष्ट, जिस मंदबुद्धि प्राणी ने ब्रह्मत्या कर डाली हो, अभी आई थिंक यमराज अलग अलग रोग को एड्रेस करेंगे। हाँ इसको बताया रोगराज गलत कुष्ट, कुष्ट एक प्रकार का कुष्ठ रोग होगा ये, कोढ़ नहीं, कोढ़ एक प्रकार का कुष्ठ रोग है। कुष्ठ में अलग अलग वराइटीज होती है, उसमें एक होता है विटिलिगो यानी कोढ़, विटिलिगो ही नहीं बोलते हैं उसको, विटिलिगो ही नहीं नहीं कोढ़ होता है जो व्हाइट पैचेस होते हैं शरीर पे, तो उसको क्या बोलते हैं? यूकोडर्मा, तो वही तो उसको तो कोढ़ बोलते हैं, और विटिलिगो किसको बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, तो वो कुष्ठ रोग में नहीं आता है। अच्छा हाँ उसमें तो या लेप्रसी राइट। रोगराज गलत कुष्ठ, जिस मंदबुद्धि प्राणी ने ब्रह्महत्या कर डाली हो और प्रायश्चित आदि उपायों द्वारा उस ब्रह्महत्या का निवारण न किया हो, विशेषतः उसके शरीर में तुम्हारा स्थान होगा, इसमें संशय नहीं। अभी वो रूम एलोकेशन चल रहा है, गेस्ट हाउस। जैसे हम लोग यात्रा में जाते हैं तो रूम में लोकेशन होता है ना कि कौन कौन से रूम में रहेगा कौन व्यक्ति, वो भी एक सवाल है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि बाय चांस मिल जाए तो घुस जाना तुम, विशेषता उसके शरीर में तुम्हारा स्थान होगा, इसमें संशय नहीं है। यदि कहीं तुम्हारे द्वारा ग्रस्त होने पर वह प्राणी भगवान शंकर के महारुद्र यानी कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करे और फिर विधिवत हवन करके 24 निष्क सोने का बना हुआ सुवर्ण पुरुष ब्राह्मण को दान दे दे, तो तुम सर्वदा के लिए उसके शरीर का त्याग कर देना। ये उस रोग का उपाय बताया, उसका प्रायश्चित बता रहे हैं। ये सब अभी होगा वो देवताओं की आराधना करने से कैसे होता है, तो मोर लेस कर्मकांड की दृष्टि से होगा, मतलब अभी हमारी जानकारी के लिए है। ऐसे पुण्यकर्ता मनुष्यों के सामने तो तुम्हें सेवक की भांति व्यवहार करना चाहिए। यदि राजक्ष मां का रोगी धनहीन हो तो उसे चाहिए कि वह एक मास तक प्रत्येक सोमवार को स्नान करने के लिए सागर गामिनी नर्मदा की शरण ले। हाँ धनहीन है यदि वो, हाँ वो क्षय रोग का, उनको क्षय रोग नहीं है। गौतमी शब्द का प्रयोग किया और पैरेंथेसिस में लिखा है नर्मदा, नर्मदा का एक नाम गौतमी है, मस्ट बी। यक्ष्मण गौतमी में स्नान मात्र करने वाले उस प्राणी को तुम पुनः पीड़ित मत करना, यदि करोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा।
मतलब वो जाकर के पुनः पीड़ित होता है, छोड़ देते हैं हाँ पीड़ित करते हैं, बोलते ऐसा करे तो पुनः पीड़ित मत करना।
यस 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 ये लिखा है, गौतमी में स्नान मात्र करने वाले उस प्राणी को तुम पुनः पीड़ित मत करना। मतलब इसमें देखिए ये लिखिए उसका क्या होता है कि उसके एसोसिएटेड उसके व्रत इत्यादि का पालन करना होता है, इसका वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। एक तो एक बार स्नान करने से नहीं होगा, पहली बात नियमित रूप से स्नान करना पड़ेगा, दूसरा ब्रह्मचर्य या ये वो अलग उसके एसोसिएटेड व्रत होंगे, उसके वो व्रत का पालन करना पड़ेगा तब जाकर वो उससे मुक्त हो, क्योंकि ये तो पाप से रिलेटेड है ना, तो प्रायश्चित उस प्रकार से करेंगे तभी वो शरीर से जाएगा। महाभाग्य तुम्हारी प्यारी पत्नी विषूचिका देवी जो मनुष्य को पकड़ते ही मार गिराती है, जिसे पाप से युक्त मनुष्य के पास जा सकेगी, जिस पाप से युक्त मनुष्य के पास जा सकेगी उसे सुनो। जो मंदबुद्धि देव कार्य के लिए दिए जाते हुए धन का अपहरण कर लेता है, जो पापी भोजन के लिए बैठे हुए ब्राह्मण को वहां से उठा देता है, जो अपने पुत्रों तथा ब्राह्मणों को भुलावे में डालकर अकेले स्वयं ही उत्तम अन्न खा लेता है, ऐसे पापी को तुम्हारी प्रिया विषुचिका बाधा पहुंचा सकेगी। परंतु जो अन्न का दान देता हो अथवा देवता की सेवा करता हो उसे यह पीड़ित नहीं कर सकेगी। कॉलेरा हैजा विषुचिका, यस हैजा। प्रभो जो विषय विमोहित पुरुष पिता के गोत्र में उत्पन्न हुई, क्या बताए, जो विषय विमोहित पुरुष पिता के गोत्र में उत्पन्न हुई स्त्री के साथ कामोभोग करते हैं, उसी तरह जो नारियां पितृकुल में पैदा हुए पुरुषों से समागम करती हैं, ऐसे पापी प्राणियों को तुम्हारा पुत्र प्रमेह कष्ट पहुंचाएगा। मतलब वही डायबिटीज, अभी उसमें भी प्रमेह भी अलग अलग वैरायटीज होगी ऐसा लग रहा है, होगी वैरायटीज डायबिटीज तुम्हारी दादी को है थोड़ा, वो मधुप्रमेह कहते हैं। तो मतलब प्रमेह की एक वैरायटी मधुप्रमेह होगा। तो आई थिंक दिस पर्टेंस टू इंसेस्टुअस रिलेशनशिप, क्योंकि मतलब अपने मोर लेस बहन भाई बहन की तरह हुआ ना। हाँ वही, तो मतलब ऐसा ही होगा कि नहीं नहीं समझ गया मैं समझ गया, लेकिन वो भाई बहन की तरह होते होंगे उनकी गणना, इसलिए उसको पाप में गिना गया है। वो तो उसमें है ना, यमन है ना, उनको नहीं नहीं उनको उनका जो धर्म है वो अलग प्रकार से उपधर्म दिया गया है ना उनको, उनको उपधर्म उनके सगे भाई बहन में शादी होती है, सगे भाई बहन में नहीं होती है। हाँ लेकिन समझिए इस्लाम दिया गया था कौन से एरिया में, वो रेगिस्तान था और वो सनातन धर्म पालन करने के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए उनको उपधर्म दिया गया था। तो वहां वो कौन सा आएगा, क्या बोलते उसको, नहीं वो कौन सा धर्म बोलते हैं उसको, आपद धर्म, वो आपद धर्म हो गया, इस इमरजेंसी है ना वहां, उनके नियम ही अलग होंगे उसके। यस वो वर्णाश्रम से बाहर है वो लोग, ये वर्णाश्रम वालों की बात हो रही है।
जंगल में रहने वाले ट्राइबल थे वो लोग पशु को मार के खाते, उनको पाप नहीं लगता, जैसे शेर पशु को मार के खाते हाँ। उनका भी उनको पाप नहीं,
उनको वो पाप नहीं लगता, भले वो मनुष्य नहीं मिले लेकिन वो पशुवत ही है, इसलिए
पंचम स्कंध 26 अध्याय में आया है कि पाप और पुण्य किस किस प्रकार से लगते हैं वो व्यक्ति के स्तर के ऊपर आधारित।
यस
हमारे जो हमारे
राइट। दूसरे जो सुवर्ण की चोरी करने वाले पापी हैं, वे सर्वदा मूत्रकृच्छ से व्यतीत होंगे। मूत्रकृच्छ, मूत्रकृच्छ क्या होता है, अच्छा यूरिन संबंधी, उसमें स्टोन भी हो सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, बहुत सारे यूरिन से संबंधित, या राइट ओके। अभी थोड़ी चार पांच श्लोक खत्म कर देते हैं। स्वर्ण सिकता तथा पलभर तोले हुए सोने का आभूषण देवता को प्रदान करके मनुष्य प्रमेह रोग से छुटकारा पा जाता है, उसका प्रायश्चित बताएं। स्वर्ण सिकता तथा पलभर तोले हुए सोने का आभूषण देवता को प्रदान करके मनुष्य प्रमेह रोग से छुटकारा पा जाता है। मूत्रकृच्छ का रोगी वीरवत्ता ब्राह्मण को पूरे पलभर स्वर्ण का कमल बनाकर दान दे तो वह मूत्रकृच्छ रोग से मुक्त हो जाता है। उसका वेट का यूनिट होगा, वेट का यूनिट है। जो विशेष लोभवश शिव संपत्ति की चोरी करते हैं तथा जो पराई उन्नति को देखकर मुख बिचकाने वाले हैं, उन्हें लिंग पीड़ा का रोग होता है। जो सुवर्ण की चोरी करने वाले हैं, वे कुंभी पाक आदि भयंकर नरकों में गिरते हैं। नरक भोग के पश्चात पुनर्जन्म लेने पर वे कुनखी होते हैं, कुनखी क्या होता है? कुनखी क्या होता है कि वो जो सोने की चोरी करता है वो पहले जाएगा कुंभी पाक, फिर उसका वापस जन्म होगा मनुष्य योनि में, नरक भोग में पश्चात, नरक भोग के पश्चात पुनर्जन्म लेने पर वे कुनखी होते हैं। कुनखी अच्छा ऐसा है, कुनखाश्च कुनखाश्च वही होगा। उनके दिन या बताया, यस यस यस, उनके दिन नख मांसपिंड के समान हो जाते हैं, शरीर पांडु रोग से पीड़ित होने के कारण पांडु के समान पीला पड़ जाता है। ऐसे रोग से ग्रस्त हुआ मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार ब्राह्मण को जपा के पुष्पों से पूजा करके सरसों की खली के साथ भैंसा दान करता है तथा मुद्गल नामक रमणीय तीर्थ में जाकर तिरपन हजार विष्णु संबंधी मंत्र का जप करता है। तुम्हारे भाई पांडु को चाहिए कि वह ऐसे मनुष्य को छोड़ दे, यदि नहीं छोड़ेगा तो वह भी मारा जाएगा। खत्म करते यहाँ। महाभारत ग्रंथ की, महर्षि जैमिनी की, महामुनि व्यास की, श्री प्रभुपाद की जय।